Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भगवान शिव के चरण से प्रकट हुई हुई भक्ति रूपी लता वही मेरी खेती है। सत्कर्म संवर्धिता सबसे अंत में श्लोक है। जीवन भर मैंने जो सत्कर्म किया है वो सत्कर्म ही शुभ कर्म ही उस भक्ति रूपी लता के लिए संवर्धन यानी मल का काम करेगा। मल जल बोलते हो कि नहीं, उसके जड़ में मल जल डालना चाहिए। मल माने खाद, मल का अर्थ खाद। तो क्या खाद डालोगे, कौन सा खाद डालोगे भाई, यूरिया की कौन सा डालोगे, फर्टिलाइजर का। सत्कर्म तो जीवन भर तुम तो जो सत्कर्म करते हो वही सत्कर्म ही भक्ति रूपी लता के लिए खाद का काम करता है। और असत्कर्म जहां हुआ कि वह उसके लिए फिर जहर का काम करेगा। देखो लता में भी क्या डालना है क्या न डालना है, कौन सी खाद डालनी है, ये बड़ा किसान लोग बहुत सावधानी करते हैं। हम लोग तो गाय गोट है, गौशाला है आश्रम में, तो आश्रम के आसपास में यही सब्जी के ये बीज रोपण करते हैं, तोरिया लौकी करेला। वो एक होता है ना लंबा लंबा सर्प जैसा, चिचिंडा बोलते हैं पहाड़ के, अब तो यहां क्या बोलते हैं, पूरे सर्प जैसा है लंबा होता है चितकबरा। वो भी लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, खीरा लगाते हैं। तो गोट में से गाय के गौशाला में से निकलने वाला गोमूत्र है, कहते हैं कि वो ज्यादा बहुत उर्वरक है, उसके जड़ में डालना चाहिए, किसी ने कह दिया। और एक गौसेवक था वो थोड़ा मूर्ख टाइप का था, गोमूत्र ले जाके उस पौधे के उसमें ही डाल दिया, सीधे सिर में ही डाल दिया। थोड़ी देर के बाद तो मर गया बेचारा। उसको डालने का भी सिस्टम है, थोड़ा दूर दूर से डालना चाहिए जमीन में, कीड़े भी नहीं लगेंगे, उसको उर्वरा भी मिलेगा। बोले सत्कर्म जो है ना वो भक्ति लता के लिए नुकसानदायक नहीं है और हितकारी है और पुष्ट होगी। जितना सत्कर्म करोगे उतने भक्ति लता और संवर्धित होगी और फैलेगी और पुष्ट होगी। सत्कर्म ही उसके लिए खाद का काम है। तो महाराज सत्कर्म रूपी खाद तो उसको डालोगे, लता को खाद डाला और पानी नहीं डाले तो मर जाएगा वो। बोले पानी भी डालेंगे, कहां से मिलेगा पानी। आनंदामृत पूरिता, देख लो आनंद ही भगवत सेवा के द्वारा होने वाले जो आनंद है वही भक्ति लता के लिए जल का काम करेगा। बस आनंदामृत पूरिता सत्कर्म संवर्धिता भक्ति लतिका, ये सब भक्ति लतिका का ही विशेषण है, भक्ति रूपी लता के ही विशेषण है। ये कहां उगी है ये भक्ति लता, हर पादाम्बुज आवाला, भगवान शिव के चरण में चरण रूपी खेत में उगी हुई है। मल क्या है तो बोले सत्कर्म संवर्धिता, जल क्या है तो आनंदामृत पूरिता। लता को छत में ले जाना है तो अपने आप तो छत में जाएगी नहीं, उसको सपोर्ट चाहिए, आधार चाहिए। कोई खंभे के सहारे से ही लता ऊपर उठती है, नहीं तो जमीन में ही फैलती रहेगी। तो खंभा क्या होगा? स्थैर्योपग्नमुपेत्य, भगवान शिव की जो भक्ति है उसके सपोर्ट के लिए जीवन में स्थिरता चाहिए। हमारे जीवन में स्थैर्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है, हम तो बदलते रहते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी शुरू करते हैं, कभी शिव भक्ति करते हैं तो फिर कभी छोड़ देते हैं, कृष्ण भक्ति कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं राम भक्ति कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। स्थैर्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है। साधना में स्थिरता की आवश्यकता होती है। स्थैर्योपग्नम उपेत्य, स्थैर्य रूपी खंभे में, खंभे के सहारे से भक्ति रूपी लता ऊपर बढ़ती है। स्थैर्य रूपी साधना में स्थिरता रूपी खंभे के सहारे से भक्ति रूपी लता ऊपर बढ़ती है। महात्मा दृष्टांत देते हैं ना, घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए, एक किसान के यहां पहुंचे खाना खाने के लिए, भिक्षा खा ली, भोजन कर ली। कहा है कुछ क्या है भक्त, कोई इच्छा है तुम्हारी, क्या इच्छा है? बोले हम तो किसान है महाराज, खेत बहुत है, जमीन बहुत है, लेकिन पानी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कोई एक कुआं खोद लिया जाए और उससे हमारी खेती का सिंचन हो, खूब खेती हो, खूब फसल हो, लेकिन कहां पर खेत के किस हिस्से में कहां पर खोदें और पानी मिले। कई बार खोदते हैं पानी नहीं मिलता है, आप संत हैं बताइए, कृपा करिए। महात्मा ने कहा कि कहां है खेत, दिखाओ। गए, महात्मा कुछ साधक थे, कुछ सिद्ध थे महात्मा, घुमा और ध्यान से देखा और कहा कि यहां पर पानी है, तुम यहां पर खोदो, पानी मिल जाएगा तुमको। 40 फुट खोदना तो पानी मिल जाएगा। महात्मा तो चले गए। अब उसने विचार किया 40 फुट खोदना है तो पानी मिल ही जाएगा, तो एक गड्ढा खोदी, एक फुट बराबर एक फुट का, फिर दूसरे गड्ढा खोद लिया एक फुट बराबर एक फुट का, कितने फुट, कितने गड्ढे हो गए, कितना फुट हो, 2 फुट हो गए ना। फिर तीसरा गड्ढा खोद लिया एक फुट बराबर एक फुट का, एक फुट स्क्वायर का खोद लिया ना तीसरा फुट, तो 3 फुट तो हो गए। करते करते 40 गड्ढे उसने खोद ली, तो 40 फुट हो गया कि नहीं? महात्मा ने क्या कहा था, 40 फुट खोदा, कहा था 40 फुट, गिना उसने तो 40 फुट हो गया, पानी तो नहीं आ रहा है। महात्मा लोग भी है, ये भात खाने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए घूमते हैं, और खाना खाने को मिल गया, भोजन मिल गया, भक्तों को ठग लिया, भाई चले गए 40 फुट खोदा, कोई पानी मिला नहीं, कहा था 40 फुट खोदो। कुछ साल के बाद महात्मा घूमते हुए आए, भाई वो किसान तो समृद्धि को प्राप्त हुआ होगा क्योंकि हमने बताया था 40 फुट खोदो पानी मिल जाएगा, पानी मिल गया तो खेती खूब हुई होगी, फसल तो खूब समृद्धि को प्राप्त हुआ होगा। चलते हैं वहां, वहां पहुंचे तो कहां जैसा का वैसे ही, महात्मा को नमस्कार भी नहीं कर रहा है किसान। अरे भक्त क्या हुआ? बोले महाराज आपने झूठ बोला। क्या बेटा? आपने कहा था 40 फुट खोदो तो पानी मिल जाएगा, हमने 40 फुट खोदा परंतु पानी नहीं मिला। महात्मा ने कहा ऐसी क्या बात है भाई, 40 फुट खोदे फिर पानी न मिले? पानी तो था, पानी तो 20 फुट में ही था, 40 फुट तो हमने फिर भी ये कह दिया था कि कहीं सूखा पड़ जाए तो भी वो कुआं न सूखे, पानी तो 20 फुट में ही है, दिखाओ कहां है तुम्हारा कुआं। खेत में ले गया, देख लो महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40, ये 40 फुट एक एक फुट के। अरे मूर्ख, इस तरह 40 गड्ढे एक एक फुट के खोदने के लिए नहीं कहा था? एक ही तरफ एक ही जगह नीचे गहराई में 40 फुट नीचे खोदने को कहा था। महाराज ये तो हमसे नहीं होगा, जीवन में यदि धैर्यता नहीं है तो सफलता कहां से मिलेगा? स्थिरता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, साधन में एक रूपता होनी चाहिए। हम लोग तो बीच में छोटा सा विक्षेप आ गया कि तो साधन में हम छोड़ देते, परित्याग कर देते हैं और फिर शिकायत करने लग जाते हैं, महाराज इतना किया कुछ फल नहीं मिल रहा है, ये किया फल नहीं मिल रहा है, वो किया फल नहीं मिल रहा है, हम फिर शिकायत करने लग जाते हैं। स्थैर्यम, स्थिरता चाहिए। स्थैर्योपग्नमुपेत्य भक्ति लतिका, जीवन के जो स्थिरता रूपी धैर्य रूपी खंभे के सहारे से है, भक्ति रूपी लता ऊपर बैठती बढ़ती है। ऊपर कहां जाती है? छप्पर चाहिए कि नहीं? गांव में तो छप्पर होते हैं, गोट होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, घास फूस के छप्पर होते हैं या ईंट के खपरेल के छप्पर होते हैं, है ना? तो उसी में चढ़ा देते हैं तो वहीं फैल जाती है लता। बोले वो छप्पर भी है लता को चढ़ाने के लिए हमारे पास। कौन से छप्पर में चढ़ाओगे? तुम तो सन्यासी हो, घर ही नहीं बनाया। उच्चर्मान सकायमान पटलिम, अनेक दिनों से साधना से परिपुष्ट हुई हुई मानस काय, मन रूपी शरीर यानी सूक्ष्म शरीर। मानस काय मतलब सूक्ष्म शरीर, मन रूपी, क्योंकि भक्ति लता स्थूल शरीर में नहीं चढ़ती है। वो बात समझ गया कि नहीं? भगवान की भक्ति स्थूल शरीर से नहीं करनी है। भगवान की भक्ति कौन से शरीर से करनी है? सूक्ष्म शरीर से। हम लोग मन से तो भगवान की भक्ति करते नहीं है, इंद्रियों से कर देते हैं, शरीर से कर लेते हैं। शरीर से तीर्थ यात्रा कर ली और कह दिया कि भक्ति कर ली, शरीर से ब्रज परिक्रमा कर ली तो बहुत भारी भक्ति कर ली, शरीर से गंगा नहा लिया तो कह दिया कि बड़े भारी भक्ति कर ली है। मन में भक्ति की लता तो अंकुरित हुई नहीं, और शरीर से ही भक्ति करके क्या फल देगी भाई? वो शरीर तो नाशवान है, है? नाशवान शरीर से क्या भक्ति होगा? इसीलिए तो वेदांतियों ने कहा, तुम लोग नाराज नहीं हो जाना हो, वेदांतियों ने इसलिए तो कहा, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा है, उत्तमा सहजावस्था। सबसे उत्तम व्यक्ति तो यही है कि बस सहज में रहो, साधो सहज समाधि भली, कबीरदास जी ने कहा है। आंख बंद करके होने वाली समाधि से भी उत्तम समाधि तो सहज समाधि है। समाधि के लिए कोई कोई तुम कृत्रिमपना ना हो। और यही तो अपरोक्षानुभूति में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने राजयोग समाधि की चर्चा की है। राजयोग समाधि, वहां प्राणायाम की प्रक्रिया बताया, बड़ा सुंदर। सामान्यतया प्राणायाम में पहले पूरक करना पड़ता है, फिर कुंभक करना पड़ता है, बाद में रेचन करना पड़ता है। लेकिन राजयोग ठीक इसका उल्टा होता है। राजयोग में पहले रेचन करना पड़ता है, फिर पूरक करना पड़ता है, और अंत में कुंभक करना होता है। अनात्म भावना को परित्याग करना ही रेचन है। पहले तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर से जो अनात्म में आत्मबुद्धि की थी, वो अनात्म भावना, उसको तो तुमने अंदर से निकालना पड़ेगा। ये रेचक प्राणायाम हो गया, निकालो सबसे अंदर से। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्ण चाहम। ये क्या है, यहां तक क्या है, रेचन है, हटाओ। न स्त्री न पुरुष, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, न मनुष्य न देव न यक्ष न किन्नर, रेचक। अभी तक हम क्या मानते रहे, ये सब हम हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं गृहस्थी, मैं ब्रह्मचारी, मैं व्यापारी, मैं धनिक, मैं नौकर, मैं सेवक, इन सब का तुम पहले तो रेचन करो। फिर क्या करो, तो बोले कुंभक माने पूरक करो, दूसरे नंबर में पूरक करो। पूरक क्या करना है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये पूरक करो, इसको ले आओ, ये है पूरक। और अंत में करो कुंभक, इस पूरक को निकलने नहीं देना। कुंभक का अर्थ होता है जो श्वास अंदर लिया जाता है उसको निकलने नहीं देना, रोके रखना। रेचन का अर्थ होता है निकलना, पूरक का अर्थ होता है अंदर लेना। सामान्य प्राणायाम में क्या होता है, पहले पूरक करो, फिर दूसरे नंबर में कुंभक करो, तीसरे नंबर में रेचन करो। प्राण को अंदर लाओ, अंदर रोके रखो, फिर बाहर निकालो। और राजयोग के प्राणायाम में क्या होता है, पहले रेचन करो। अंदर तो अपने आप ही कचरा आ गया है, अंदर लाना पड़ेगा रेचन। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव तुमको लाना पड़ा है, वो तो पैदाइश से ही तुम्हारे दिमाग में घुस गया है सब। मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये तो पैदाइश से ही घुसा हुआ है। अब इसको निकालो, यही तो दुख का कारण है। पहले रेचन करो, दूसरे नंबर में पूरक करो। किसका रेचन करना, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षऊ, ये प्रक्रिया है रेचन की। आत्मसटक का जो पहला श्लोक से पांच श्लोक तक रेचन ही रेचन है। और अंतिम में जो लास्ट श्लोक है वो पूरक है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपा। ये पूरक हो गया। और तीसरे नंबर में कुंभक करो, रोको बस, इसको फिर जाने नहीं देना, निकलने नहीं देना है? तब देखो तुम्हारा योग राजयोग फिर क्या होगा, यद यद चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् आत्मेति भावयत। ये सहज समाधि है, आंख से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वहां तीन वस्तु की तुम भावना करो, क्योंकि जगत में पांच वस्तु हैं टोटल, पांच वस्तुओं में से तीन वस्तु सत्य हैं, दो वस्तु मिथ्या है। अस्ति वाति प्रियंच वा नाम रूपं च पंचमं आद्यत्रयं ब्रह्म रूपं माया रूपं ततोद्वयम्। अस्ति भाति और प्रिय, नाम और रूप, ये पांच वस्तु मिलकर जगत में जो कुछ भी दिख रहे हैं ये पांच वस्तुओं का मिला जुला सरकार है। इनमें से जो लास्ट के जो दो है नाम और रूप, ये माया के रूप होने के कारण मिथ्या है, और हर नाम रूप में जो तीन चीज हैं वो सत्य है। अस्ति, अस्ति माने अस्तित्व, अस्तित्व होना पना, ये क्या है, कागज है, कागज तो कागज हो गया, हाय क्या होता है, हाय का क्या आकार है भाई, कागज का तो आकार है, सफेद है, स्क्वायर में है, नाम और रूप कागज है, नाम रूप सफेद स्क्वायर में है ना, कागज तो कागज हो गया, ये हाय क्या होता है, हाय का क्या आकार है, हाय का क्या रूप है, हाय के बिना ये कागज सिद्ध ही नहीं होगा, कागज का जो होना पना अस्तित्व वही अस्ति, अस्तित्व जिसके चलते कागज कागज हो रहा है। भाति माने दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, भाति। प्रिय माने ये सबके काम में आ रहा है, प्रिय, प्रियता न होती तो कागज बनता, बोलो प्रिय प्रियता अस्तिभाति प्रिय, ये तीन चीज कागज में है। हम खाली नाम और रूप देखते हैं, वो तीन चीज को देखते नहीं है, अस्तिभाति प्रिय को देखते नहीं है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और जब तुम्हारी अस्तिभाति प्रिय ये तीन वस्तुओं में दृष्टि पहुंचेगी तब क्या होगा, यद्यत चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् आत्मे इति भावयत, वही सहज समाधि होगी, उसी का नाम सहज समाधि, उसी का नाम होगा राजयोग। बड़ा आनंद का है राजयोग, आनंदामृत पूरिता, आनंद रूपी रस से जल से भक्ति रूपी लता को सिंचन किया गया है, और वो कहां चढ़ेगी, छप्पर में, छत में, किसके छत में, मानसकाय पटलिम, उच्चैर मानसकाय पटलिम, हमारा जो मन है वो तो निम्न वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण मन की भूमिका भी निकृष्ट हो गई है, उच्च वस्तु का ध्यान उच्च वस्तु का चिंतन करे तो मन की भूमिका ही उच्च हो जाएगी। हमारी अब की इस समय की मन की अवस्था है वह पांच भूमिका में से, सात भूमिका में से पहली भूमिका में भी नहीं है, है? पहली भूमिका तो शुभेच्छा है, और हम लोगों की इच्छा शुभ की इच्छा है कि अशुभ की इच्छा है, बोलो, शुभ इच्छा है, है? घर जाते ही गरम गरम पकोड़े और चाय खाने को मिले, ये शुभ इच्छा की अशुभ इच्छा है, बोलो क्या है ये, अशुभ इच्छा है। संसार और सांसारिक पदार्थों को भोगने की इच्छा कहीं शुभ इच्छा होती है, इसी अशुभ इच्छा के चलते तो मन की भूमिका आगे बढ़ नहीं रही है। मन हमारी भूमिका, हमारी साधना, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, सात भूमिका है भाई। शंकराचार्य जी बोलते हैं शुभेच्छा से लेकर तूर्यगा तक की जो भूमिका है साथ, इतनी ऊंची है मन की भूमिका, मन की अवस्था। मानस काय पटलहिर, भक्ति तो वास्तव में हृदय से होने वाली चीज है। भक्ति लता मन रूपी छत में चढ़ने वाली है। सूक्ष्म शरीर, भक्ति साधना सूक्ष्म शरीर से होती है, हृदय से होनी चाहिए। भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से होनी चाहिए। भक्ति शब्दों से नहीं, भाव से होनी चाहिए। शब्दों से होने वाली भक्ति तो अधम भक्ति है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा तीर्थ यात्रा, अधमा अधमा तीर्थ यात्रा तो जप आदि भी वो कनिष्ठ है, उत्तम नहीं है। तो हम लोग तो एक माला पूरी करने का नियम बना लेते हैं, है? मेरी जब पूरी नहीं हुई है, हाँ जब पूरी नहीं हुए कैसे हम नाश्ता करेंगे भाई? हम लोग तो उस चक्कर में रहते हैं ना, मेरी पूजा खत्म नहीं हुई है, इसलिए सुबह सुबह यहां कथा के बाद हम अंदर जाते हैं कमरे में, है? कभी कभी भारती बहन सोनी हमारे लिए नाश्ता ले आती हैं, उमा बहन ले आती है, है? नाश्ता ले आती है, तो हम तो कथा समाप्त करते चले नीचे जाते हैं, खा लेते हैं फटाफट, है? हमारी साधना तो सुबह ही हो जाती है 4 बजे से, तो हमें तो कोई अड़चन नहीं है, है? तो वहां बैठे हुए किसी को कहो तुम भी खाओ ना, बोले नहीं हमारा पूजा पाठ समाप्त नहीं हुआ है। क्या हो गया, 10 बजे तक भी तुम्हारी पाठ समाप्त नहीं हुई है, क्या बात है? सुबह तक क्या करते रहे? भगवान जाने। तो पाठ करना ही भक्ति मान लेते हैं, है? ये बहिर भक्ति है। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा जप पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। अधम से भी अधम है तीर्थ यात्रा, क्योंकि स्थूल शरीर से होने वाली साधना है, है? तीर्थ यात्रा स्थूल शरीर से होने वाली भक्ति है। जप ये इंद्रियों से होने वाली भक्ति है। और ध्यान धारणा मन की वृत्ति से होती है, उत्तमा ये बुद्धि से होती है। उत्तमा सहज अवस्था तो बौद्धिक है, मानसिक भी नहीं है, बुद्धि से निश्चय करने वाली चीज है ये। आनंदामृत पूरिता हर पदम भोजाल वालोद्यता स्थैर्योपग्नमुपेत्य भक्ति लतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानस कायमान पटलिम। मन की ऊंची भूमिका उस मानस शरीर के छप्पर के ऊपर स्थिरता रूपी खम्भे के सहारे से भक्ति रूपी लता को चढ़ाना है। तो फिर वहां चढ़ेगी ये भक्ति लती लता, आक्रम्य निष्कल्मसा, शुद्ध निष्कलमष आक्रम्य पूरे छत को व्याप्त करेगी, फैलेगी वो। तो क्या होगा? नित्याभीष्ट फल प्रदा भवतु मे, ऐसी जो भक्ति लता है वो मेरे लिए, मैं माने मेरे लिए नित्य अभीष्ट फल प्रदान। जैसे कल्पतरु के बारे में आप लोग सुनते हो, हैं? कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यदि आपने अपने घर में लगा ली तो नित्य अभीष्ट फल प्रदान।